ओम शांति। सुनहरी धूप बरसात के बाद, सुनहरी धूप बरसात के बाद, समान आचरण दृढ़ संकल्प के बाद, समान आचरण दृढ़ संकल्प के बाद, थोड़ी सी हंसी हर बात के बाद, थोड़ी सी हंसी हर बात के बाद, ऐसी विशेष होती है आपके क्लास की बात। आदरणीय रामनाथ भाई जी, हम सभी उनका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। बाप दादा से मिलन का अनुभव तथा शक्तियों की प्राप्ति हम योग द्वारा ही करते हैं। इसी योग के विषय में आपको विशेष रुचि है, आप 1972 से इस ज्ञान पथ पर चल रहे हैं, 1978 से समर्पित रूप से इस यज्ञ में सेवाएं दे रहे हैं, रिलीजियस विंग के आप हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, आप मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवाओं में व्यस्त रहते हैं। कर्मयोगी बन सेवाओं में रहते हुए भी आप बहुत विचार सागर मंथन कर ज्ञान के खजानों से भरपूर हैं और अपने क्लासेस के द्वारा लाखों आत्माओं को विशेष योग में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आज हम सब आपसे सुनेंगे निस्वार्थ सेवा कैसे करें, इस विषय पर। आदरणीय रामनाथ भाई जी, ओम शांति।
ओम शांति। आज का टॉपिक है कि निस्वार्थ सेवा। आज ही बाबा ने सवेरे मुरली में सुनाया था, सेवा में क्या होना चाहिए, मन मत और मनुष्य मत नहीं। कौन सा मत होना चाहिए? श्रेष्ठ श्रीमत पर जो कर्म करते हो उस कर्म को सेवा कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म कहते हैं। संसार में हरेक व्यक्ति कर्म करता है, बहुत सारी दुनिया में समाज सेविकाएं हैं, समाज की सेवा करते हैं, लेकिन वो सेवा और यज्ञ की सेवा, इसमें बहुत रात दिन का अंतर है। तो यहां भी देखना, आप सभी भाई बहने जो बैठे अभी, सब सेवाधारी है, सबने पांच छह दिन तक अच्छी तरह से सेवा किया, लेकिन आप पूछो अगर सेवा करते समय मन में बाबा का ज्ञान का अगर चिंतन करते हुए कर्म करते हो तो बाबा ने कहा एक का पदम गुना जमा होता है, कि ईश्वर की, शिव बाबा ने इस धरती पर यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, इस यज्ञ की आप जितनी, क्योंकि लेकिन स्मृति चाहिए। साधारण अगर शरीर समझ करके कर्म करते हो तो कर्म दुनिया वाले भी करते हैं और भी बहुत लोग करते हैं, तो उस कर्मों में और इस कर्मों में अंतर है। तो थोड़ी सी सेवा भी करते हुए बहुत जन्मों का भाग्य अगर जमा करना चाहते हो उसकी विधि है, क्योंकि शिव बाबा ने कहा इस रुद्र यज्ञ की अगर आप सेवा करते हो दिल से विधि पूर्वक, एक का पदम गुना जमा कराता है, भाग्य बनाता है, क्योंकि भाग्य विधाता बच्चों का भाग्य बनाने के लिए ऐसा सेवा का चांस हरेक को देता है, लेकिन वो भी विधि पूर्वक करेंगे तो। किसी प्रकार की आप सेवा करो, लेकिन सेवा करते समय आप पूछना हमारे मन में किसकी स्मृति थी, सामने कौन था, किसको देखकर किसके श्रीमत के अनुसार आप सेवा कर रहे थे। देखो भक्ति में मीरा भी पवित्र रही ना तो भी सत्युग में आएंगी, पवित्र रही, पवित्र रहने से नहीं, किसके श्रीमत के अनुसार पवित्र रही तो वो फल देगा ना। तो यहां भी सेवा तो दुनिया में हरेक करता है, आपने जो सेवा की किसके श्रीमत के अनुसार, और आपके मन में बुद्धि में दिल में कौन था। अगर बाबा का चिंतन करते हुए, बाबा आप साकार मुरली में सुनते हो कर कारडे दिल यार्डे कहते बाबा, अर्थात हाथों से कर्म कर रहे हो। मन में जो सवेरे मुरली सुनी तो मन में ज्ञान का चिंतन करते हुए अगर आप कर्म करते हो, वो कर्म एक का पदम गुना जमा कराता है। अगर सेवा करते हुए आप इधर उधर की बातें करते रहे, कोई गीत सुनते रहे, है ना, इधर उधर देखते रहे, तो आपने सेवा तो किया लेकिन उसका एक का एक गुना है। देखो थोड़ा सा सेवा करते ही आपको थकावट लगती है, थक गए हैं। अगर वही बाबा की याद में ज्ञान का चिंतन करते हुए, बाबा को शिव बाबा को साथ रखते हुए अगर आप सेवा करते हो, जितना भी करो आपको देखना थकावट नहीं होगी और भी खुशी महसूस होगी, क्योंकि ये सेवा वर्तमान भी आत्मा को खुशी देती है, सुख देती है। भविष्य में प्रालब्ध तो मिलेगा ही, लेकिन अभी वर्तमान में भी आपको लगता है हमारा कुछ जमा हो रहा है। अगर वो नहीं, साधारण एक उदाहरण बताता हूं, देखना आप सेवा भी कैसी होती है, एक आप जवाब देना। देखो सेंटर में भी हर एक व्यक्ति सेवा करता। आज अभी बाबा ने दो तीन मूल्यों में कहा स्व की स्थिति और सेंटर के जो स्थान सेवा करते आप स्थान, ये दोनों निर्विघ्न होना चाहिए। आपकी स्थिति भी निर्विघ्न स्थिति चाहिए और जहां आप रहते हो आपका स्थान, चाहे घर हो चाहे सेंटर हो, निर्विघ्न बाबा देखना चाहता है। विघ्न कहां आ रहा है? सेवा में। मैंने सेवा किया और सेवा का आप रिटर्न अभी चाहते हो, मुझे मान मिलना चाहिए, शान मिलना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। सेंटर बड़े बड़े बनते हैं, तन मन धन लगाते हैं, अगर मान नहीं मिलता है, ओपनिंग पर आपको बुलाया नहीं है, तो वहां दुश्मनी शुरू हो गई, वहां लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, है ना। तो ये सेवा के अंदर निस्वार्थ भाव नहीं है, तो किसी ना किसी प्राप्ति का भाव देगा, मुझे ये मिलना चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में किसी ने किया उसका नाम रहता है, इसने 1,00,000 रुपया दिया, तो हम जो सेवा करते उसको सेवा नहीं करते। तो सेवा करते समय अगर देखो भंडारे में भी आप कुछ डालते हो, अगर भंडारे में बाबा को धन देते समय भी सेवा करते समय, उस समय अगर आपके बुद्धि में शिव बाबा याद आए तो एक का पदम गुना जमा होता है। अगर भंडारे में कुछ डालते समय किसने, बहन जी ने कहा था सेवा करना है, और किसने कहा था ये करना है, अगर किसी व्यक्ति को स्मृति में रखते हुए सेवा करते हो तो एक का एक गुना जमा होता है। सिंपल बात देख लो, दो भाई है, दोनों भाई एक ही बैंक में गए, दोनों ने एक ही समय पर एक ही बैंक में 100-100 रुपया रखा, लेकिन एक भाई ने 100 रुपया देते समय कहा भाई जी ये 100 रुपया बैंक में रख दो, दूसरे भाई ने भी बैंक का उसको पैसा दिया 100 रुपया, ये पैसा 100 रुपया 10 साल के लिए रख दो, एक शब्द ऐड किया। अगर 1 साल के बाद लेने जाओ तो दोनों को समान मिलेगा? क्या किया आप दोनों कहेंगे मैंने भी 100 रुपया दिया, इसने भी 100 रुपया दिया, एक ही बैंक में रखा है, लेकिन एक शब्द कि उसने कहा कि ये पैसा 10 साल के लिए रख दो, फिक्स डिपॉजिट हो गया, और उसने कहा 100 रुपया बैंक में रख दो, तो करंट अकाउंट हो गया, तो कोई जमा कोई रिटर्न इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो इसके लिए एक शब्द क्या से क्या अंतर करता है। यहां भी सेवा करते समय अगर आपके बुद्धि में मैं शुभ बाबा की यज्ञ की सेवा कर रहा हूं, तो सेवा उसको कहते हैं जो निस्वार्थ भाव से, और सेवा करते समय स्मृति में कौन था, किसके याद में सेवा करते हो, तब एक का पदम गुना जमा होता है। जैसे बैंक में देखो, दोनों ने एक साथ पैसा रखा, सिर्फ एक शब्द अंतर हो गया कि उसने कहा कि मेरा बैंक में रख दो, और एक ने एक शब्द कहा कि 10 साल के लिए रख दो, है ना। तो यहां भी सेवा करते समय किस स्मृति में करते हो आप। अगर किसी देहधारी को देखकर, हाँ बहन जी कहती सेंटर में सेवा करो इसलिए कर रहा हूं, नहीं, बाबा की यज्ञ की सेवा। इसमें भी आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूं, सोचना, क्योंकि ज्ञान सुनते हैं समझ में नहीं आता, देखा गया। तो एक उदाहरण बताता हूं, देख लो, बाबा मुरली में सुनाता है कि बच्चे तन मन धन सेवा में लगाओ। आज भाई जी ने सुना कि बाबा ने कहा तन मन धन सेवा में लगाओ, तो भाई जी देखता है कि मैं तो तन तो नहीं लगा सकता हूं, सवेरे से रात तक नौकरी करना है, बहुत बिजी है, नहीं कर सकता हूं, तो मन भी बिजी है, तो देखता जेब में थोड़े से पैसे है, धन की सेवा कर सकता हूं। तो उसने सोचा, सेंटर में देखा कि यहां सब थोड़े बुजुर्ग माताएं जमीन पर बैठी है, तो मैं क्या सेवा कर सकता हूं। उसको लगा चलो मेरे पास थोड़े से पैसे है, जाके कुर्सी लाके रखते हैं। तो मार्केट में गया, कुर्सी लाके सेंटर में रख दिया, तो उसने सेवा किया, भाग्य बनेगा, सोच लो। बाबा ने मुरली में कहा सवेरे, बच्चे तन मनसा वाचा कर्मणा, कहा तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, सेवा में लगाओ, भाग्य बनेगा। मुरली सुनी, मुरली सुनने के बाद उसने अपने आप को देखा कि मैं एक तन तो नहीं लगा सकता हूं, मन में भी साधारण बिजनेस करना, नौकरी करता हूं, बहुत बिजी, क्या कर सकता हूं मैं। तो लगा मेरे पास थोड़े से पैसे है, तो इस पैसे से आज क्या करो, देखा सेंटर में कुर्सी नहीं है, तो मार्केट में गया, एक कुर्सी परचेज करके लाके रख दिया, तो धन की सेवा हुई। एक का पदम गुना जमा होगा, नहीं होगा, क्यों, बाबा की मुरली सुनिए, सेवा किया। माताजी कहते नहीं है, भाई बताओ हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हा? जो आज बाबा ने कहा, मुरली सुनने के बाद भी सेंटर में निमित्त कोई टीचर है ना, वहां के व्यवस्थापक कोई है, ऐसे नहीं आए, तो निमित्त टीचर को बोलना, बहन जी आज बाबा ने कहा कि सेवा करो, तो मुझे मन में विचार आया कि मैं कुछ सेवा करूं, मैं क्या करूं, तो मेरे मन में विचार आया ये सेवा करता हूं। तो बहन जी कहेंगे बहुत अच्छा, नहीं तो कहेंगे एक नहीं और भी 10 कुर्सी लाना है, है ना। तो पूछ के करते हो तो एक का पदम गुना जमा हो गया। तो ऐसे होता है, बाबा की मुरली सुनी सीधा आप सेवा करने जाओ, हाँ बाहर किसी की सेवा ज्ञान सुनाए बात अलग है, लेकिन यहां व्यवस्थापक है, सेंटर में कोई सेवा करने वाले, उनको पूछ करके तो श्रीमत को भी कैसे यूज करना है ये भी नहीं पता चल रहा है। उसके कारण सेवा जो करते हुए भी भाग्य जमा नहीं हो रहा है। तो सेवा किसको कहते हैं, किस विधि से करना चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए, नहीं तो हर एक व्यक्ति सेवा करता है, दुनिया में भी लोग करता है, जमा नहीं हो रहा है, भाग्य नहीं बनता है। और एक उदाहरण देता हूं, देखना। तो एक भाई प्रैक्टिकल से भी बताता हूं, क्योंकि आप सब सेवा करने वाले बैठे हैं, एक कुमार है, बहुत सवेरे से रात तक मेहनत करता है, और एक दिन भी सेंटर में मुरली मिस नहीं करता है, दौड़ दौड़ के आज के कितने दूर से साइकिल लेके आता है कि मुरली सुननी चाहिए, तो दौड़ के आके आगे आगे बैठता है। अभी सेंटर में वो एक ही कुमार है, अभी 7 बजे को पानी आता है सेंटर में, बहन जी मुरली क्लास के लिए 7 बजे आती है, तो देखता अरे एक कुमार बैठ गया है, अरे भाई जाओ पानी भरो। अब वो दौड़ दौड़ के मेहनत करके आता है कि मुरली सुननी चाहिए, सेंटर में आते ही बहन जी ने देखा 7 बजे को, अरे भाई जाओ पानी भरो। अब उसने देखा 1-2-3 दफा आया सेंटर में, आने के बाद मुरली सुनने तो मिलती नहीं है, बहन जी सेवा करो कहती है, उसने सेंटर में आना ही बंद कर दिया। तो एक थोड़े समय के बाद मिला, हमने कहा सेंटर में नहीं जाते हो, भाई जी मैं जाता था मुरली सुनने के लिए, देखो सारे दिन में बहुत बिजी रहते हैं, मैं दौड़ दौड़ के सेवा के लिए जाता हूं, बहन जी मुझे सेवा करने सुनने मुरली सुनने देती नहीं है, सेवा करो कहते हैं, मैंने जाना ही बंद कर दिया। हमने कहा अपने भाग्य पर आपने लकीर लगाया, तो मैं क्या करूं, हमने कहा पूछना चाहता, किसी को पूछा नहीं, बुद्धि इतनी चलती नहीं है, तो यहां बाबा की सेवा करते हो ना, ब्राह्मणों के मुख से ना नहीं होना चाहिए। तो हमने उसको युक्ति बताया, सेवा करो, कैसे करो, मुरली भी सुनो, दोनों हो सकता है, दोनों कैसे होगा? कहते हो सकता है, आप आओ सेंटर में अपने समय पर और एक ड्रम लेकर के रख दो, पाइप लगा करके चालू करके रख दो, 10 मिनट के बाद जाके देखो मुरली सुनते बैठो। बाबा की सेवा ना नहीं होनी चाहिए, सेवा भी होनी चाहिए और आपकी भी सेवा होनी चाहिए, दोनों काम हो सकता है ना। तो बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, युक्ति चाहिए। अगर ना करते हो आप, किसको ना किया आपने? बहन जी के घर की सेवा तो नहीं किया ना, तो बाबा की यज्ञ की सेवा, बाबा को, बाबा आपको भाग्य देता है। तो आप सोचो दोनों काम हो सकता है, हां हो सकता है। तो हमने कहा एक ड्रम लाओ, पाइप लगा करके छोड़ दो उसके अंदर, पानी 7 बजे आएगा, 10 मिनट के बाद देख लो, पता चलता है एक दिन आधा भरा, 15 मिनट के बाद भर जाता है, 15 मिनट में जाके बंद करो, आप तब तक मुरली सुनो, मुरली भी सुनी, सेवा भी होगा, है ना, दोनों भाग्य बना सकते हो। युक्ति चाहिए। अगर आपने कभी भी, बहन जी कहेंगे सेंटर की कुछ सेवा करो, ना नहीं, आप नहीं कर सकते हो, औरों से करा लो, है ना। सेवा किसकी है? ये क्यों बता रहा हूं मैं, स्मृति, भाग्य क्यों नहीं बन रहा है? सेवा किसकी है? ये किसी व्यक्ति की नहीं, हमारे सामने व्यक्ति रहता है, इन्होंने कहा इनकी सेवा कर रहा हूं, नहीं, तब भाग्य नहीं बन रहा है। तो सेवा करते समय, इसका नाम है सेवा, टाइम देख के नहीं, 8 घंटा 10 घंटा उसको ड्यूटी कहते हैं। हम ड्यूटी नहीं करते हैं, ड्यूटी नौकरी में 8 घंटा हो गया? नहीं, यहां किसी को पगार मिलता है, सेंटर में मिलता है? नहीं, सेवा। शिव बाबा ने कहा सारे कलप का भाग, अनाज भी साफ करो आप, किसको भोग लग रहा है? आपने जो अनाज साफ किया उसका भोग सबसे पहले किसको लगा? भक्ति में देवताओं को लगता है, यहां सर्वशक्तिवान शिव बाबा को भोग लगता है, है ना। तो ये अगर आपके बुद्धि में है, अनाज साफ करते हुए भी एक भी पत्थर नहीं जाना चाहिए, इधर उधर बात करते रहे, इसको देखते हुए अनाज साफ किया, अगर एक पत्थर गया तो बाबा के भोग में पत्थर आ गया, चलेगा? भगवान को भोग लगता है रोज, आपने जो, तब बाबा ने कहा छोटी भी सेवा करो ध्यान से कि भाग सारे कलप का भाग जमा हो रहा है, लेकिन कभी स्मृति हो। अगर स्मृति नहीं, इधर उधर के बात करते रहे, इसको देखते रहे, तो इस घर में तो करते ही हो, संसार में ऐसे करते हो, लेकिन कम से कम यज्ञ में यहां आने के बाद ये यज्ञ सारा कलप का, तब बाबा ने कहा बहुत बड़ा भाग्य है ये। और किसको खिला रहे हो आप? ब्राह्मणों का खाना खिला रहे हो, एक ब्राह्मणों को बुलाते हैं, और भोग आपने जो अनाज साफ किया, सब्जी काटी, रोटी बनाई, किसके लिए बनाई? किसको भोग लगा पहले? पहले बाबा को भोग लगता है, फिर बच्चों को मिलता है ना। तो आपके मन में बाबा याद है, भगवान को हम भोग बना लगा रहे, भगवान के लिए सेवा कर रहा हूं। तो ये स्मृति में अगर आप कुछ भी सेवा करो तो एक का पदम गुना जमा होता है, वो देखना आप। अगर इस भाव से सेवा करते हो खुशी होती है, थकावट भी नहीं होंगे, देखना आप थकेंगे भी नहीं आप। तो कारण, सेवा किस भाव से कर रहे हो, भाव का, भावना का भाड़ा मिलता है, श्रेष्ठ भावना है अंदर। किसी व्यक्ति की सेवा नहीं करते हो, अगर हमारे सामने किसी सेंटर में भी करो आप, किसी व्यक्ति को देखते हो, नहीं बहन जी ने कहा था इसलिए कर रहा हूं, आपके मन में कौन आया? बहन जी आई, बहन जी देंगी ना रिटर्न कि बाबा देगा? हाँ, अगर आपके सामने बाबा की यज्ञ की सेवा आए, अगर बाबा को सामने रखते हुए अगर कुछ भी काम करते हो आप, ना नहीं, ब्राह्मणों के मुख से ना नहीं निकलता है। सेंटर में बहन जी ने कहा आपको, अभी मुरली सुनने आ गए आप, अब भी मन कहा तो भी, हां आप नहीं कर सकते हो, किसी से करा लो, है ना। औरों को जो खाली है, जो कर सकता है दूसरा, लेकिन ना नहीं, अगर आप कर सकते हो तो आप अपना भाग्य बनाओ, नहीं तो औरों का भाग्य बनाओ, क्योंकि भगवान की सेवा है। तब बाबा ने कहा कि इस कलयुग को स्वर्ग बनाने के लिए बच्चों की मदद चाहिए, क्योंकि बाबा बच्चों का भाग्य बनाना चाहता है, नहीं तो स्वयं ऐसे करो तुरंत हो जाएगा, लेकिन नहीं, बच्चों का भाग्य बनाना है। तो कैसे बनेगा? अपने आप बनेगा, सेवा करेंगे तो होगा ना। क्यों? बाबा ने कहा हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, तीनों बाबा देगा। कलयुग और स्वर्ग में अंतर क्या है? अभी कलयुग में देखना आप, किसी के पास बहुत सुंदर शरीर है लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है, किसी के पास बहुत खाने के लिए है, शरीर सदा बीमार है, सब कुछ है खा ही नहीं सकते है, क्या करें? किसी के पास धन भी है और तन भी अच्छा है लेकिन दिमाग ठीक नहीं है, है ना। इसका नाम है कलयुग। स्वर्ग क्या है? बाबा आके क्या करता है? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, इन तीनों को समान इक्वल करता है। कैसे करेगा? परम धाम से भेजेगा? नहीं। तो बच्चों को यह भाग्य विधि बताता है। क्या विधि बताता है? बच्चे, साइंस ने या भगवान ने दुनिया में ऐसी कोई विधि बनाई नहीं है, बिना बीज बोए हुए खेती में कुछ उगेगा? ऐसा हो सकता है? साइंस ने इन्वेंशन किया बिना बोए हुए कुछ निकलेगा? नहीं। साइंस ने इन्वेंशन किया, विधि भी है, एक बीज बोलो 100 दाना लगेगा, है ना। हाइब्रिड किया जल्दी फल निकलेगा, लेकिन एक बीज बोना पड़ेगा ना, बिना बोए हुए तो निकलेगा नहीं। तब बाबा ने कहा अगर ये तन निरोगी काया चाहते हो, अपने आप मिलेगा? होगा निरोगी काया? होगा शरीर? नहीं, बाबा दे देगा? नहीं। बच्चे ये तन इस ईश्वरीय यज्ञ के अंदर स्वाहा करो। शास्त्रों में कहा दधीचि ऋषि ने हड्डी हड्डी स्वाहा किया। यज्ञ में हड्डी डालेंगे तो यज्ञ भ्रष्ट हो जाएगा। हड्डी डालते हैं क्या यज्ञ में? अर्थात इस तन से इस रुद्र यज्ञ की सेवा करो। जितना यह तन आपका नहीं, आपको कल छोड़ के जाना है, यह आपका तन नहीं है, आपको दिया हुआ है, तो आप यज्ञ की जितनी सेवा करते हो यह यज्ञ, यह तन निरोगी काया होगा। तो बाबा ने गारंटी दिया, 21 जन्मों की तो गारंटी है। उसके आगे और भी करते हो आप, इस शरीर को कोई भी बीमारी नहीं आएंगी कभी। अपने आप नहीं, बाबा की मैं सेवा करता हूं, मुरली सुनता हूं, नहीं, सिर्फ इतना नहीं, ये तन शिव बाबा को याद करते हुए यज्ञ की अगर सेव सेंटर भी, गीता पाठशाला कहीं भी करो, ऐसे नहीं मधुबनी करना चाहिए, सारा सृष्टि के ऊपर यज्ञ रचा है, कहीं भी अगर इस तन की आप सेवा करते हो, कितना घंटा करते हो पूछ लो, 24 घंटा आपके पास है, 24 घंटे में ये तन भगवान की सेवा में कितना लगता है, और किसी के व्यक्ति की सेवा में कितना लगता है? किसी कंपनी में काम करो, 1 घंटा काम करेंगे तो 1 घंटा का पगार मिलेगा ना, 10 घंटा करेगा 10 घंटा मिलेगा ना। बाबा ने कहा, बाबा देखता है, चेकिंग करता है ना, अभी भी कहा बाबा देखता है कि इसलिए ऊपर है। तो आप पूछो ये तन ईश्वरीय सेवा में कितना लगा रहे हैं, कि बाबा ने कहा संगम का 1 मिनट भी 1 साल के समान है। तो ये तन हम ईश्वरीय सेवा में कितना लगाते हैं, उतना रिट 1 का पदम गुना ये तन निरोगी काया होगा। हाँ, आप में से कोई एक कहेगा भाई जी मेरे पास बहुत धन है, तन से मैं सेवा नहीं कर सकता हूं, बहुत बुजुर्ग हो गया हूं, धन देता हूं, तो उसको निरोगी काया मिलेगा? मिल सकता है ना, मिलेगा? सोच लो, कभी कभी हम धन की सेवा करते तन की नहीं कर सकते हैं, नहीं करते, चलेगा? नहीं। विधि है सृष्टि के अंदर, नियम विधि है। खेती में अगर आप गेहूं का बीज बोलो तो चावल नहीं उगेगा। नहीं, भगवान जो चाहे कर सकता है, ऐसा नहीं। उसको भी बाबा ने पर कल कहा था, लॉ मेकर, कायदा है, नियम है कि खेती में जो बीज बोते हो वही उगेगा, दूसरा नहीं उग सकता है। तो इसलिए अगर इस तन से, जितना तन अगर निरोगी काया चाहिए तो इस तन से यज्ञ की सेवा करो और बाबा को साथ रखते हुए करो, तो यह तन निरोगी काया हो जाएगा। ये बीज बोया गारंटी है, 1 का पदम गुना रिटर्न देगा, विश्वास है। जैसे करेंसी नोट पर लिखा रहता है ना, कि बाबा हम गवर्नमेंट का हमें विश्वास है, नहीं तो कागज में क्या 100 रुपया कैसे हो गए? फेथ, विश्वास। तो भगवान पर हमें विश्वास है। मनुष्य ठग सकता है लेकिन भगवान ठगी नहीं करेगा। तो अगर आप विश्वास से, निश्चय से, यत्न से यज्ञ की सेवा करते हो, हाँ सामने वाला कुछ नहीं दे रहा आपको, पूछता भी नहीं। कभी कभी भाई कुमार बताते हैं, भाई जी हम सेंटर में इतनी सेवा करते हैं, बहनजी ने एक पानी का ग्लास भी नहीं दिया, बहनजी ने पूछा भी नहीं, खाना खाया कि पूछा भी नहीं है, हम घर में जाके कैसे खाना बनाएंगे अभी। हाँ ये भी इच्छा रखना, बहनजी की सेवा कर रहे थे आप, बहनजी से रिटर्न कुछ चाहते हो नहीं। अगर सेवा करते समय बाबा की सेवा करता है, बाबा देखता है, बाबा ध्यान रखता है, बाबा ने कहा बच्चों की पालना करता हूं, अपने आप बहन जी को टचिंग देगा, बच्ची जाके पूछ लो बच्चों को प्यास लगी है खाना खिलाओ, बाबा देगा। अगर आपने पहले से इच्छा रखा कि नहीं आज तो घर में खाना नहीं बुलाएंगे, सेंटर में खाएंगे, सेंटर की सेवा कर रहा हूं, इच्छा निस्वार्थ भाव से सेवा करो। बाबा बच्चों से लेता नहीं, एक का पदम गुना देता है, लेकिन पहले से हमारे मन में इच्छा रहती है हमें कुछ प्राप्ति मिलनी चाहिए, तो ये स्वार्थ निस्वभाग्य बनाता नहीं है। समझ में आया? तो सेवा कैसी होनी चाहिए? तब बाबा ने कहा तन यज्ञ की सेवा में लगाओ मन। मन क्या कर रहा है सारा दिन में आप पूछ लो? अभी बाबा ने कहा मन जीत, मन को जीत सकते हो? कैसे जीतेंगे आप? किसी के पास प्लान है तो बताओ। अभी बाबा ने दो दिन हो गया मुरली सुनी, मन को जीतने का किसी के पास प्लान है? है किसी के? माताजी के पास है? कैसे जीतेंगे आप? सबसे सहज है, कल ही आज से करके देखना। मन को जीतने के बाबा ने बहुत दफा कहा और आप करके देखना, कोई मेहनत नहीं, सबसे सहज तरीका है और हरेक कर सकता है। आपको नहीं, हम भी करता हूं तब बता रहा आपको। एक ही है, सवेरे उठते ही अपने आप को एक पाठ पढ़ाओ। क्यों? कि हमको बचपन से सिखाया इनको देखते ही भाई कहना है, इनको देखते ही माताजी कहना है, ये पढ़ाया है बुद्धि को, ये समझ है। तो भूल से भाई को देखते माताजी नहीं कहेगा ना, तो ये समझ है। अभी सवेरे उठते ही, कल सवेरे उठते अपने आप को एक पाठ पढ़ाओ, बुद्धि को एक पाठ पढ़ाओ कि कल सवेरे से रात तक मेरे आंखों के सामने कोई भी आता है, करोड़पति भी हो या रोडपति भी हो, मित्र भी हो दुश्मन भी हो, किसने बहुत परेशान किया आपको या किसी ने आपको बहुत सुख दिया है, कोई भी आया उसको खाली हाथ भेजना नहीं है। कर सकते हैं? आप कहेंगे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप किसके बच्चे हो, है ना? दाता को हमारा कौन है? तो बाबा के जेब में हाथ डाल सकते हैं ना और दान कर सकते हो, खुटेगा नहीं, है ना? तो किसी पर नजर जाते ही शुभ बाबा इस बच्चे को शांति की शक्ति दे दो। और किसी पर, जैसे भक्ति मार्ग में करते थे, रास्ते पर जा रहे इधर उधर देखते भी रहेंगे, राम राम करते रहते थे, क्यों? मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए, मुख में भगवान का नाम रहे। और यहां किसी को देखते मन में गलत, किसी को देख के गलत विचार न आ जाए। हाँ उन्होंने तो गुस्सा किया, उन्होंने परेशान किया, लेकिन आपके मन में विचार आया, आपका मन मैला हो गया। आपके मन को संभालना आपका काम है, दूसरा थोड़ी संभालेंगे, दूसरे करेंगे, बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन उनका मन मैला हो जाएगा। आपके मन को आपको संभालना है। कैसे संभालेंगे आप? तो सबसे एक ही तरीका है, संसार में 24 घंटे काम करो, अच्छी आंखें खोल के अच्छी तरह से देख लो, आंखें झुकाओ नहीं, बंद नहीं करो, अच्छी तरह से देखते ही मन में एक ही काम करना, बस किसी को देखते ही मुझे देना है। अगर नहीं देते हो आप, वो व्यक्ति आपके अंदर घुस जाएगा, ये याद रखना। क्योंकि गीता में कहा हवे के अंदर सुगंध है या दुर्गंध है, आपको पूछ के आपके अंदर घुसेगा? अंदर जाने के बाद पता चल रही है खुशबू कहां से आई? ऐसे संसार में चलते समय किसी को देखा आपने, कैमरा खुला है, फोटो निकालता है, योग में बैठते ही भाई सामने आता है, क्यों आया ये? कि आपने कैमरा फोटो निकालता है, है ना? तो आप लेते हो नहीं, लेने वाले नहीं, देने वाले बन जाओ। उसके लिए, देने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, किसी को खाना नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इवन मुस्कुराहट भी नहीं चाहिए, वो भी शरीर की हो गया, शरीर से मुस्कुराने की भी जरूरत नहीं है। सबसे कहा वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स, कहते हैं आवाज यहां से यहां पहुंचता है, आपका मन का संकल्प बहुत तीव्र गति से काम करता है ना। अभी साइंस की दुनिया है, साइंस की दुनिया में सब कुछ सूक्ष्म होता जा रहा है। आप रास्ते पर चलो, घर से सेंटर में आते हो रोज, किसी पर नजर गई, घर में है, परिवार है, किसी को देखते ही बच्चे बहुत परेशान करते हैं, सुनते नहीं है, गुस्सा नहीं करो, गलत शब्द बोलो नहीं, आपके बच्चे नहीं भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा ये आपका बच्चा, इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। आपका मन जो सोच रहा है वो वहां तक पहुंचता है, तो शुभ सोचा करो। आपको फैक्ट बताता हूं मैं, एक तरीका प्रैक्टिकल। एक जगह मैं क्लास कर रहा था तो माताएं, किसी ने कहा आजकल मां बाप की सेवा बच्चे नहीं करते हैं, बच्चे मां बाप बुजुर्ग होते हॉस्टल में रखते हैं, हाँ ओल्ड होम एज में रखते हैं, तो क्यों पहले ऐसे नहीं करते थे, मां बाप की सेवा करते थे बहुत अच्छी तरह से, अभी क्यों नहीं करते हैं? कि पूछा, देखा गया बचपन में मां बाप बच्चों को बहुत गुस्सा करते हैं, परेशान करते हैं, मारते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं पढ़ने के लिए। तो प्रैक्टिकल ऐसे में सुना रहा था, सुनाते सुनाते क्लास में एक माता रोने लगी। हमने कहा माताजी बीमार होंगी, हमने दूसरी माताजी को कहा माताजी आप उनको देख लो। नहीं भाई जी मैं बहुत अच्छी हूं, मुझे आज समझ में आया कि मेरे दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे कभी हमारे पास आते नहीं है, मिलते भी नहीं, बात भी नहीं करते हैं। क्यों? कि अभी समझ में आया, बचपन में पति नहीं था, नौकरी करने जाती थी मैं, बच्चों को संभालना है, सवेरे उठाती थी बच्चे उठते नहीं थे, मारती थी बहुत, गुस्सा कर देती। बच्चों को याद है बड़े होने के बाद मां बाप के नजदीक नहीं आ रहे हैं। कहते आज मुझे समझ में आया। कहने लगी भाई जी मैं जाके माफी मांगू। हमने कहा माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपको पता है बच्चों का बर्थडे, उस समय केक बना के ले जाओ, बच्चों को कुछ खाना बना के ले जाओ, अब से रोज आप फोन करते रहो, वो जवाब नहीं देंगे लेकिन आप करो, एक दिन समझ में आएगा। क्यों नहीं करते हैं? कारण, कहते बच्चे बिगड़ गए बच्चों के ऊपर डाल देते हैं, कारण बीज हम है, हमने बचपन में बच्चों को गुस्सा किया, थप्पड़ मारा, तो वो नजदीक आएगा नहीं आएगा ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि हमें सेवा करनी है, कैसी करनी है, ज्ञान में चलने के बाद मां बाप को भी गुस्सा करते हैं, ज्ञान सुन रहे हो गुस्सा भी कर रहे हो तो कौन मानेगा बच्चे ज्ञान में चलेंगे? कहते बच्चे पर परिवार में ज्ञान में चलते नहीं, कारण आप मुरली सुन के जाते हो और घर में बच्चों को पति के ऊपर युगल के ऊपर गुस्सा करेगा, चलेगा? आएंगे ज्ञान में चलेंगे कोई नहीं चलेंगे ना। तो आज संसार देखना चाहता है, सुनना नहीं चाहता है ना। तो सेवा कैसी, परिवार की भी कैसे करना चाहिए, तब बाबा ने कहा मन के अंदर जो ज्ञान सुनते हो वो चिंतन करो। एक ही मुरली के पॉइंट, बस एक मुरली के पॉइंट आपके बुद्धि में रहना चाहिए, दो भी नहीं रहता, याद नहीं रहता है। एक मुरली के पॉइंट जैसे देख लो, आप कहते आप जो इतने बैठे यहां, आप में से एक भी हाथ उठाओ जिसने आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया, ऐसा कोई व्यक्ति है? बताओ, एक महीना सिमसम, बाकी छोड़ दो, क्योंकि बाबा ने एक साल पहले शिवरात्रि पर कहा था बाप को गिफ्ट दे दो, है ना, क्रोध का दान दे दो, गिफ्ट दे दो। तो आप में से इतने जो बैठे हैं, इसमें से एक व्यक्ति बताओ भाई जी मैंने एक महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया है। हाँ एक माताजी हाथ उठाती है, बस भाई एक ही भाई, दो भाई है, धीरे धीरे उठा रहे हो, एक दो ही है ना। कितने बाबा के बच्चे रोज मुरली सुनते हो, योग करते हो। तो अगर अभी तक हमने क्रोध को ही नहीं छोड़ा है, उसके पीछे और चार है, वो कब छोड़ेंगे? और बाबा कहता है अचानक कल जाना है, अचानक समय परिवर्तन हो जाएगा, तो माना हमारी पढ़ाई किसके लिए है? द्वापर युग में आने के लिए? पूछ लो, अपने आप से पूछ लो कि जो पढ़ते हैं कुछ करते हैं तो कुछ क्यों, हमने देखा सुनते हैं समझ में नहीं आता है। क्लास में अभी कोई एक आया भाई जी, कहता भाई जी बहुत अच्छा क्लास था, हमने क्या सुना बताओ? एक भी शब्द याद नहीं है। कि बैठते हैं लेकिन ये पढ़ाई है, भावना नहीं है, सिर्फ पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, उसमें बहुत नहीं, एक मुरली के पॉइंट ले लो, आज की मुरली के पॉइंट एक आप आज सारे दिन में आचरण में लाओ, बार बार चिंतन करो, बार बार औरों को सुनाओ, आज देखो बाबा ने ऐसे कहा, आज बाबा ने ये कहा, मुख से निकलना चाहिए। मुख से तभी निकलेगा कि अगर बुद्धि में है तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। नहीं तो संसार के सारे बातें याद रहती है, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसा किया, सब याद रहता है, लेकिन आज की मुरली के पॉइंट याद नहीं रहता है कि बुद्धि स्वच्छ नहीं है, है ना। तो ज्ञान इसके लिए सुनते हैं ना, इसलिए दिन प्रतिदिन मुरली के इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। तो बाबा ने देखा, तब बाबा ने कहा, मुरली को कितने भाई बहने सुनते हैं रोज, पूछा ना, अवैक बाबा ने पूछा। तो इसलिए मुरली के अंदर इंटरेस्ट कम हो रहा है, सुनते भी है लेकिन उसका मनन चिंतन वर्णन नहीं है। तो एक मुरली के पॉइंट तीन दफा, जैसे देखो शरीर को तीन दफा खिलाते हो, आत्मा को कितना दफा खिलाते हो, एक दफा, है ना। तो शक्तिशाली कौन हो गया, शरीर। तो आपको क्रोध छोड़ के क्यों जाएगा, इसलिए क्रोध छोड़ के जा ही नहीं रहा शरीर को, क्रोध को आप सारा दिन में तीन दफा खिलाते हो, शरीर माना पांच विकार, उसको खिलाते हो आप, आत्मा एक ही दफा खाता है, तो शक्तिशाली कौन हो गया, आत्मा हो गया कि शरीर हो गया। हां, इसका मतलब खाना नहीं खाओ ऐसे नहीं, तो आत्मा को भी तीन दफा खिलाओ, उसको कहते हैं हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। शरीर भी स्वस्थ चाहिए और आत्मा भी स्वस्थ चाहिए, तो आत्मा को तीन दफा खिला सकते हो। सवेरे जो मुरली सुनते हो, एक पॉइंट लिख के अपने जेब में रखना जो आपको अच्छा लगता है। जब नाश्ता करने बैठते हो, इस हाथ से नाश्ता कर रहे हो, इस हाथ से निकाल के पढ़ो, आज बाबा ने क्या कहा था, बस हो गया। उसके बाद दिन में खाना खाने बैठते हो, खाना खाने के लिए बैठते हो, उस समय खाली समय है, उस समय जेब से निकालो, ढूंढने जाओ तो मिलेगा नहीं, निकालो पढ़ो। रात को फिर खाना खाने बैठते हो, नहीं तो सारा दिन बिजी है, अगर जेब में है ढूंढने जाओ तो याद नहीं रहेंगे, जेब में है निकालो। सारे दिन में तीन दफा अगर अपने आप को पढ़ाते हो आप, तो ज्ञान समझ में आता है। शरीर को तीन सवेरे खाया था, शाम को क्यों खिलाते हो फिर, सवेरे तो खाया था। शरीर को तीन दफा चाहिए, आत्मा को भी भूख लगती है ज्ञान की, ज्ञान आत्मा के लिए भोजन है, है ना। सबसे सहज तरीका, अपने मन को, जो बाबा ने कहा मन को जीत लो, व्यर्थ से मुक्त करो, अपने आप नहीं होगा। एक, मन को ज्ञान सुनाते रहो बार बार, कम से कम तीन दफा। दूसरा, संसार में चलते समय किसी पर नजर गई, खाली हाथ छोड़ना नहीं है उसको, उस आत्मा को कुछ ना कुछ देना चाहिए, लेकिन आप देना नहीं, अपने जेब से देना नहीं, आप जो कमाई करते हो जमा रखना, सारे क्लब में चाहिए। बाबा ने कहा संगम पर बाप की सेवा ले लो, सिर्फ बाबा संगम पर मिलता है, तो बाबा से लेके दान करो, बाबा भी याद आया और सामने वालों के प्रति सेवा भी हो गई और आपका मन भी स्वच्छ रहा, एट ए टाइम मल्टीपर्पज, तीनों काम हो गया, है ना। ऐसी चीज चाहिए, इसको कहा मन को कैसे जीतने का सहज तरीका है। धन, आप में से किसी को मैं एक सिंपल एक उदाहरण देता हूं, ऐसे बताओ तो समझ में आता, आप जवाब देना, ठीक है। एक जब उदाहरण देता था, देखो भाई जी के गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है और एक भाई जी के घर गांव में एक सेंटर भी बन रहा है। हाँ, अब देखेंगे आप मंदिर में लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो भाई जी ने एक लाख रुपया दान किया मंदिर बनाने के लिए, तो पुण्य जमा हो जाएगा नहीं, मंदिर में हजार लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, चलेगा नहीं, क्यों बताओ, कौन बताएगा। मंदिर बना है ना, मंदिर अच्छा है ना, देवताओं का, हजार लोग दर्शन करने आएंगे, भाग्य बनेगा, अच्छे काम में लगाया, चलेगा। हाँ, लेकिन वो ज्ञान में आप भी पता, अगर लौकिक वाला कोई कहेगा भाई जी मैंने मंदिर बन रहा है एक लाख रुपया दान किया मंदिर के लिए, तो उसका भाग्य बना। हाँ, अच्छी तरह सुनना, बाबा ने बहुत तो अच्छा शब्द अभी एक महावाक्य यूज किया, बच्चे धन को मनुष्य आत्मा को पुण्य आत्मा बनाने के कार्य में लगाओ। पहले बाबा ने कहा मनुष्य को देवता बनाने के लिए, अभी बाबा ने कहा धन को कहां लगाओ, धन को मनुष्य आत्मा को पुण्य आत्मा बनाने के लिए। अभी मंदिर में आपने लगाया, तो मंदिर में जो जाएगा हाथ जोड़ता है, नारियल केला रखता है, बाहर आके गुस्सा भी करता है, दारू भी पीता है, लड़ाई झगड़ा भी करता है, उसने जमा क्या किया? तो आपको क्या मिलेगा? बैंक वाला आज बैंक में 100 रुपया रखा तो आपको 5 रुपया 10 रुपया कब देता है? वो दूसरे लोगों को, बिजनेस वालों को पैसा देता है, तो उससे जो मिलता है 5 रुपया वो रखता है, 5 रुपया आपको देता है। अगर बैंक ने 100 रुपया लिया, कहीं भी इन्वेस्ट किया नहीं है, तो आपको क्या देगा? तो वहां जो मंदिर में हाथ जोड़ने के लिए 1000 लोग आए, उन्होंने क्या कमाई किया? कुछ किया नहीं। आपको क्या मिलेगा? अगर आपने वही, आपके गांव में एक सेंटर बन रहा है, वहां आपने 1 लाख रुपया दिया, वहां 10 भाई बहने आके बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, अरे वो भाई दारू पीता था, तंबाकू खाता था, मुरली सुनते सुनते उनको समझ में आया गुस्सा नहीं करना चाहिए, तंबाकू छोड़ना चाहिए, फिर योग भी लगाता है, शिव बाबा को याद भी करता है, शक्ति कमाता है, उस शक्ति में से 1% आपको मिलेगा ना कि उसने कुछ कमाई किया है। वहां बैठ करके बुराई कुछ छोड़ी, धीरे धीरे योग लगाता है, कुछ जमा करता है, जो जमा करता है उसमें से 1% आपको मिलेगा। तो मंदिर में जो जाता है उसने क्या कमाई किया? कुछ किया? कुछ नहीं किया। आया, हाथ जोड़ा, गया, और भी बाहर जाके गुस्सा करता है, चोरी करता है, कुछ भी करता है, तो जमा किया नहीं है। अगर आप खेती में एक बीज बोलो कुछ लगा ही नहीं है, दोबारा डालेंगे? अगर खेती में बीज क्यों बो रहे हो आप? एक बीज बोते हो 100 दाना लगेंगे, है ना, तो कुछ रिटर्न मिलेगा, तो पुण्य तभी करते हैं ना। तो धन भी कहां लगाना चाहिए? नहीं तो कहेंगे हमारे गांव में मंदिर बन रहा है, हाँ अच्छा काम है, लेकिन आपको क्या मिलेगा? वहां बीज जो बोया आपने उसमें कुछ उगेगा? उगेगा तो आपको मिलेगा। हाँ, अगर मंदिर में जाकर वहां कोई अपना गुस्सा छोड़ता है, हाँ श्री कृष्ण भगवान को हाथ जोड़ता है, हाँ भगवान कभी गुस्सा नहीं करता, मुझे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करता है, तो उसका रिटर्न आपको भी मिलेगा। तो वहां तो कुछ करता है कोई? कुछ बताओ, जो भाई बैठे हैं मंदिर में जाते हैं, पूजा करते करते हो? नहीं। सेंटर में आने के बाद 1 महीना ज्ञान सुना, धीरे धीरे परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने के बाद उसको लगता है पैसा बचता है, योग भी लगाता है, कुछ कमाई करता है, जो कमाई का हिस्सा 1 गुना आपको मिलेगा, क्योंकि कमाई कर रहा है। तो सोचो, तब बाबा ने कहा धन को भी कहां लगाओ, मनुष्य को पुण्य आत्मा, वो पुण्य कमाता है, क्योंकि आपको कुछ मिलना चाहिए, तो पुण्य बनाने के कार्य में लगाओ। तो तन कहां लगाना चाहिए, मन कहां लगाना चाहिए, धन कहां, ऐसे अपने आप हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। आप कहेंगे सत्युग में हमको भी बाबा वर्षा देगा, तो बीज बोना पड़ेगा। जो आपने अगर तन लगाया नहीं, मन लगाया नहीं, धन लगाया नहीं, आप कहेंगे हमारे पास तो धन ही नहीं है, मैं सिर्फ तन की सेवा करती हूं, तो धन कहां से आएगा? बाबा ऊपर से देगा? नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे, तीनों प्रकार के बीज बोएंगे तो तीनों में बैलेंस रहेगा। पहले इम्बैलेंस था, किसी के पास बहुत सुंदर शरीर है, खाने के लिए कुछ नहीं है, नहीं तो सदा शरीर बीमार है, होते हुए भी खा नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? तब तीनों में बैलेंस चाहिए। तब बाबा भाग्य बनाने की विधि बताता है, इसलिए शिव बाबा कौन? भाग्य विधाता है। बच्चे तन कैसे लगाओ, मन कहां लगाओ, धन कहां लगाओ, कितना लगाओ, जितना लगाते हो 1 का पदम गुना जमा होगा। और लगाने की विधि भी है, एक दूसरों को देख के नहीं, आप जो कर रहे हो, आप जो बो रहे हो, उसका फल आपको मिलेगा। तो ये कैसे सेवा करना चाहिए, जमा कब होता है? तब आपको लगता मैंने जीवन में आके कुछ कमाई किया है, जमा किया है, तो ये निस्वार्थ सेवा हमारा भाग्य बनाता है। तो हम भाग्य विधाता के पास आए हैं कि भाग्य बना, सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, है ना। बाबा कहते हैं 21 जन्मों की गारंटी देता है, उसके बाद भी अगर और भी करते हो आप, उसके बाद भी है, गारंटी इसकी है, उसके बाद खत्म नहीं हुआ है। तो इसलिए तन मन धन सेंटर में आज सब जगह पर ये विघन क्यों आ रहा है? सेंटर बनता है, कोई भाई पैसा मदद करता है, अगर उसको उधर से सहयोग नहीं मिला एंटी बन जाता है, डिससर्विस करता है। मना कुछ कामना रख के सेवा करते हो, निस्वार्थ भाव से नहीं। तो देते समय किसको दे रहे हो आप? किसी का चेहरा देख के नहीं दे दो, भगवान को याद करते हुए कर्म करो तो एक का पदम गुना मिलता है। ये कर्मों की गति है, इसको कहते हैं गुह्य गति। सेवा करते हैं, मान शान मेरा नाम हो, मुझे मिलना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, अल्प काल के लिए मिलेगा, लेकिन बाबा सारे कल्प के लिए देता है ना। तो इसको स्मृति में रखते हुए सेंटर में कहीं भी सेवा करो तो निस्वार्थ भाव से सेवा आपका भाग्य बनाता है। ठीक है, ओम शांति।
शांति, निस्वार्थ भाव से सेवा कैसी करनी होती है और उससे कितना न श्रेष्ठतम फल हमें मिलता है। हम सभी ने आदरणीय भ्राता जी से सुना, फिर से एक बारी हम सभी करतल ध्वनि से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।